अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के षष्ठ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण में आचार्य पिपला जी के पास आए हुए छह ऋषियों में से सुकेशा नाम के ऋषि ने अपनी षोडशकल पुरुष विषयक जिज्ञासा आचार्य पिपला जी के पास छठवें प्रश्न के रूप में रखी है। षोडशकल पुरुष को वे जानना चाहते हैं कि कहां है, उसका क्या स्वरूप है। से प्रश्न किया कि क्वासो पुरुष, कि वह पुरुष कहां पर है। आचार्य पिपला जी ने कहा इहैव अंतः शरीरे स पुरुष, इसी शरीर के अंदर हृदय में विद्यमान वह तुम्हारा जिज्ञास्य पुरुष है। वह पुरुष है यानी पूर्ण है, उसमें देश काल वस्तुकृत परिच्छिन्नता नहीं और सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। ऐसा जो तत्व होता है उसे कहा जाता है पूर्ण, और जो पूर्ण होता है उसे कहा जाता है पुरुष। तो पुरुष है यानी पूर्ण है, अपूर्ण है का मतलब जिसका जिससे विजातीय दूसरा कोई उसके समान सत्ता वाला नहीं है, उसके समान सत्ता वाला कोई दूसरा सजातीय भी नहीं है, और दूसरा कोई वो स्वयं सावयव भी नहीं है, निरवयव है। विजातीय दूसरा कोई समान सत्ता वाला रहेगा तो विजातीय भेद से युक्त होगा, सजातीय दूसरा कोई रहेगा, जैसे मनुष्य एक ही तो नहीं है अनेक है, तो मनुष्य का मनुष्य भेद सजातीय भेद कहलाता है। मनुष्य में जो अश्वादि का भेद है विजातीय भेद है, मनुष्य के सत्ता के समान सत्ता वाले अश्वादि भी हैं और अनेक मनुष्य हैं, तो अनेक मनुष्यों का जो एक दूसरे में भेद वो सजातीय भेद, मनुष्य में जो अश्वादि का भेद है वो विजातीय भेद, और मनुष्य सावयव है तो उसका जो शिर हस्त पादादि का आपस में भेद वह स्वगत भेद है, ऐसा आत्मा में नहीं है। आत्मा जिस सत्ता वाली है उस सत्ता वाली दूसरी कोई वस्तु आत्मा से विजातीय अनात्म वस्तु परमार्थिक सत्ता वाली नहीं है, आत्मा की परमार्थ सत्ता है, और अनेक आत्मा नहीं है वेदांत के अनुसार। तो अनेक आत्मा न होने से सजातीय भेद भी नहीं रहेगा, दूसरी कोई आत्मा के समान सत्ता वाली अनात्म वस्तु भी न होने से विजातीय भेद नहीं रहेगा, और जो एक आत्म वस्तु है वह वस्तुतः निष्कल है निरवयव है, इसलिए उसमें स्वगत भेद भी नहीं रहेगा, अतः उसे पुरुष कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है। जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है वह पूर्ण है, और जो पूर्ण है वह पुरुष है, और वो पुरुष कहां है यानी आत्मा, वो है इसी शरीर के अंदर हृदय में। और किसके हृदय में? सबके हृदय में। प्राणी मात्र के हृदय में है, वो सबकी आत्मा है, सर्वात्मा है। और उसमें स्वतः निष्कलत्व है स्वगत भेद रहित होने से, लेकिन उसी की उपाधि भूत कुछ कलाएं हैं, उसका कार्य रूपा उससे उत्पन्न होकर के उसकी उपाधि बन जाती है, उसे जगत के स्थिति काल में अविद्या अवस्था में अज्ञानी जीव इन कलाओं से युक्त ही देखते हैं, कलाओं के साथ ही देखते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है सकल। अज्ञानी के दृष्टि में जो सकल है वही ज्ञानी के दृष्टि में निष्कल है। अज्ञानी को आत्मा सकल दिखता है, सकल कहा जाता है कला से युक्त, कला सहित, तो कला के साथ अज्ञानी को जो दिख रहा है, शास्त्र से प्राप्त ज्ञान दृष्टि जिसकी है उसे वह निष्कल प्रतीत होता है, वो निष्कल है। इसलिए अज्ञानी को सकल प्रतीत होने वाला जो है उसकी कलाएं आई कहां से, तो अज्ञान वशात उसी से निष्पन्न होती है। जो स्वतः निष्कल है उसी से, उसके अज्ञान से कलाएं भासती हैं और वह सकल प्रतीत होता है। हाँ, भासती हैं। जैसे रस्सी में सर्प है नहीं, रस्सी के अज्ञान से रस्सी ही सर्पादि रूप से भासती है, रस्सी के अज्ञान से रस्सी ही से सर्प प्रतीत हो रहा है। ऐसे जो पूर्ण है उसका मैं के रूप में जब तक अज्ञान रहेगा तब तक उस अज्ञान के कारण 16 कलाएं रूपी जगत प्रतीत होगा और वह जगत से युक्त ही भासेगा, उसे सकल प्रतीत होगा अज्ञानी को पुरुष, और ज्ञानी को निष्कल प्रतीत होगा। इसलिए कलाओं का उसी में अध्यारोप, रस्सी में सर्प के अध्यारोप के तरह दिखाने के लिए आचार्य पिपलाद जी ने सुकेशा ऋषि को बताया कि यस्मिन नेता 16 कलाः प्रभवन्ति, तो जिसमें 16 कलाओं का अध्यारोप होता है, जिसके अज्ञान से 16 कलाएं रूप जगत भासता है। ये कहा। अब पुरुष कलाओं का कारण हो गया, विवर्त उपादान कारण, कलाएं उसकी कार्य हुई, तो कलाएं पुरुष से क्रम से निष्पन्न होती है या युगपत निष्पन्न होती है। युगपत का अर्थ होता है एक साथ, जैसे कहीं चौपाटी पर जाकर के कबूतरों को दाने डालते हैं तो दानों को देखते ही चुगने के लिए एक साथ कबूतर जहां दाने पड़े हैं वहां पर आ जाते हैं ना, ऐसे एक साथ कलाएं निष्पन्न होती हैं या क्रम से होती है। ये जो संशय होता है, इस संशय का निराकरण करने के लिए और कलाओं में क्रम दिखाने के लिए, कलाएं पुरुष से क्रम से निष्पन्न होती है। जगत सृष्टि का क्रम बताने के लिए आगे वाला वाक्य है, इसलिए कहा कि स ईक्षान चक्रे, उस सुकेशा के जिज्ञास्य पुरुष ने ईक्षण किया यानी संकल्प किया, वही विवर्त उपादान कारण है ना, और अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वही वही है। जगत की निष्पत्ति के पहले ब्रह्म को छोड़ करके और दूसरा कोई नहीं है, वही है। इसलिए उसने क्या किया कि ईक्षण किया, मैं अकेला हूं, अनेक रूप से प्रकट हो जाऊं, अनेक रूप बन जाऊं, ऐसा संकल्प उस एक पूर्ण पुरुष ने किया। ये कहते हैं कि स ईक्षान चक्रे, उसने संकल्प किया। खिलाड़ियों को दुख होता है इसलिए खेल करते हैं क्या? खिलाड़ी खेलते हैं वो दुख दूर करने के लिए खेलते हैं या आनंद प्राप्त करने के लिए खेलते हैं? आनंद से लीला है उनकी वो, तो ऐसे लीला है भगवान की। इसलिए ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने एक सूत्र लिखा, तत्व लीला कैवल्यम, भगवान लीला के लिए संकल्प पूर्वक जगत अभिव्यक्त करते हैं, जगत बनाते हैं, कुछ समय तक रखते हैं जब तक उनको लीला करनी है, और जब लीला का संवरण करना है तो उस समय जगत के लय का संकल्प कर लेते हैं। उनको संकल्प से अतिरिक्त और कुछ थोड़ी करना पड़ता है। जैसे स्वप्न का जगत बनाते हैं आप, तो स्वप्न में एक संकल्प को छोड़ करके और कुछ होता है क्या? स्वप्न में महल बनाने के लिए कहीं से कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं क्या? संकल्प हुआ और स्वप्न का जगत बन जाता है, सारा संसार बन जाता है। ऐसे परमात्मा एक संकल्प करता है सृष्टि विषयक, वो सत्य संकल्प होने से, सत्य संकल्प उसे कहा जाता है जिसका संकल्प होते ही संकल्प का विषय उपस्थित हो जाता है। जिस विषय का संकल्प हुआ वह विषय सामने आ जाए, प्रकट हो जाए, अभिव्यक्त हो जाए, तो ऐसा जिसके संकल्प से होता है उसे सत्य संकल्प कहा जाता है। तो परमेश्वर सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प होने से उनको संकल्प को छोड़ करके और कुछ नहीं करना पड़ता। और जीव में संकल्प के साथ साथ विकल्प भी आ जाता है, परमेश्वर में विकल्प नहीं होता, केवल संकल्पात्मक एक वृत्ति होती है। तो संकल्प के साथ विकल्प न हो तो आप के भी संकल्प मात्र से ही सब उपस्थित हो जाए। स्वप्न में जीव के भी संकल्प के साथ जिस पदार्थ विषय संकल्प होता है उस पदार्थ विषय विकल्प नहीं होता, विकल्प यानी विपरीत वृत्ति, विपरीत निश्चय, संकल्प यानी सम्यक निश्चय। तो किसी पदार्थ का आपने निश्चय कर लिया तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा विपरीत निश्चय नहीं मिल सकता है। कुछ काम करने का निश्चय कर लिया और साथ में विकल्प उपस्थित होता है कि ये मेरे से नहीं होगा क्या, ये जो है संशय में संकल्प विकल्प दोनों रहते हैं, और ईश्वर में वो विकल्प नहीं होता, संशय नहीं होता, निश्चय ही रहता है। तो इसलिए संसार जैसी, संसार इतना बड़ा कार्य तो और दूसरा कुछ हो नहीं सकता, तो पूरा संसार त्रिलोकी ब्रह्मांड अभिव्यक्त हो जाता है ईश्वर के संकल्प मात्र से। तो ये कहा कि स ईक्षान चक्रे, उसने अनेक भवन विषयक संकल्प किया। और संकल्प का यहां विषय बताया जा रहा है, अन्यत्र तो अनेक भुवन विषय है, बहुश्याम प्रजायेय ऐसा। उसी बहुश्याम प्रजायेय के अंतःपाती एक, उसको साकार करने के लिए संकल्प का विषय बताया गया तीसरे कंडिका के दूसरे वाक्य में कि कस्मिन्नु अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति, ऐसा संकल्प ईश्वर ने किया कि किसके इस शरीर में से उत्क्रमण करने पर माना जाएगा कि मेरा ही उत्क्रमण हुआ, मैं तो निकल नहीं सकता क्योंकि देशतः अपरिछिन्न हूं। वो कभी जीवित शरीर में भी रहता है परमात्मा, और मृत शरीर में रहता है कि नहीं रहता? मृत शरीर में भी नहीं रहेगा तो फिर तो उतने देश में न होने से देश से परिछिन्न हो जाएगा ना। इसलिए मुर्दे में भी है आत्मा और जीवित में भी है, परमात्मा का कहीं पर भी अभाव नहीं है, वो मृत शरीर में भी है। लेकिन भगवान कहते हैं, यानी ईश्वर ने ऐसा संकल्प किया कि ऐसा कौन होगा जिसके इस शरीर से निकलने के बाद व्यवहार में लोग कहेंगे कि इसमें से आत्मा निकल गई, और किसके इस शरीर में रहने से व्यवहार में लोग कहेंगे कि इस शरीर में आत्मा है, यानी चेतन है, आत्मा का मतलब चेतन। तो किसके इस शरीर से निकलने पर चेतन इस शरीर से निकल गया ये व्यवहार होगा, और किसके इस शरीर में रहने से इस शरीर में चेतन विद्यमान है ये व्यवहार होगा, वह ऐसा कौन मेरा प्रतिनिधि बनने योग्य है? जैसे कोई सम्मेलन हो रहा हो और किसी राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं जा पाए तो राष्ट्राध्यक्ष, कई राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हो रहा है, तो किसी विशेष कार्यवशात किसी राष्ट्र विशेष का अध्यक्ष नहीं जा पाया तो वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, और वो प्रतिनिधि अपना कार्य करके वहां कार्य करने के लिए उपस्थित हैं तो माना जाता है सम्मेलन में वो राष्ट्र आ गया, राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्र का एक प्रतिनिधि पहुंचा तो राष्ट्र आ गया कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वहां भारत की उपस्थिति है, और फिर अपना जो भाषण देना है वो दे करके निकल आया तो भारत संयुक्त राष्ट्र से निकल आया अपना कार्य करके, ये कहा जाता है। पूरा देश तो गया नहीं, 125 करोड़ लोग थोड़ी गए, वहां पर एक गया हम लोगों का प्रतिनिधि, तो कहा गया कि भारत गया और वहां भाषण देकर के आया तो भारत संयुक्त राष्ट्र से चला आया, ये कहा जाता है। तो वो प्रतिनिधि पूरे राष्ट्र के लोगों का एक प्रकार से उपस्थित होना या वहां से निकलना इस व्यवहार का हेतु बन जाता है, उस प्रतिनिधि का रहना, प्रतिनिधि का निकलना। ऐसे ही ईश्वर ने ये विचार किया, संकल्प किया कि इस कार्यक्रम संघात में ऐसा कौन है जिसके इससे निकल जाने पर माना जाएगा कि मैं ही निकल गया, और जिसके इस शरीर में रहने से माना जाएगा कि इस शरीर में मेरी विद्यमानता है, मेरी उपस्थिति है, ऐसा कौन है मेरा प्रतिनिधि बनने योग्य, ऐसा संकल्प ईश्वर ने पहले किया, विचार किया और करके देखा तो ईश्वर को अपने प्रतिनिधि बनने की योग्यता कार्यक्रम संघात में एक में दिखी। जो योग्य होगा, भारत का पक्ष 125 करोड़ नागरिकों का पक्ष रखने में, मत रखने में, उसी को उन प्रतिनिधि बना करके भेजा जाएगा। ऐसे ईश्वर ने देखा कि इस पूरे कार्यक्रम संघात में एक योग्य दिखता है, मेरे प्रतिनिधि बनने योग्य। वो कौन है? वो है प्राण। तो इसलिए इस कार्यक्रम संघात में से प्राण का यदि उत्क्रमण हो जाता है तो माना जाता है कि चेतन चला गया, चेतन का उत्क्रमण हो गया। और कार्यक्रम संघात में यदि प्राण विद्यमान है तो माना जाता है चेतन विद्यमान है कार्यक्रम संघात में, आत्मा विद्यमान है, पुरुष है इसमें। तो प्राण परमेश्वर के प्रतिनिधि बनने योग्य है, ऐसा परमेश्वर ने विचार से निर्धारित किया और निर्धारित करके अपने प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया प्राण को। हाँ हाँ, समष्टि प्राण को। ये आगे बताया जा रहा है, षोडश कलाओं में से प्रथम कला ये प्राण नाम की है। कलाएं पहले दिन से ही पूछ रहे हैं ना आप, तो ये कलाएं बता रहे हैं। अब चौथे मंत्र में कि स प्राणम असृजत प्राणात् श्रद्धाम खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी इंद्रियम मन अन्न मन्नात वीर्यम तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेशु च नाम च। इसमें 16 कलाएं बताई हैं। 16 कलाएं कौन कौन है उसे पहले गिनिए। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, आप यानी जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। नाम, नाम संज्ञा, नाम नाम रूप कहते हैं ना, उसमें जो नाम है। तो ये 16 कलाएं हैं। इन 16 कलाओं में ईश्वर का प्रतिनिधि बनने योग्य कौन है? प्राण। इसलिए प्राण को ईश्वर ने बनाया। ये कहा कि स यानी जिसने इक्षण किया, स इक्षान चक्रे, इस वाक्य में स शब्द से जिसको लिया है संकल्पकर्ता के रूप में, किसको लिया गया? पुरुष को, परमेश्वर को। उसी को यहां पर स प्राणम असृजत इस वाक्य में स शब्द से लीजिए और अर्थ निकलेगा कि परमेश्वर ने प्राण को उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? अपने प्रतिनिधि के रूप में उत्पन्न किया। और यहां प्राण शब्द का अर्थ है समष्टि प्राण। और प्राण और बुद्धि, इन दोनों को एक अन्य श्रुति वाक्य अभिन्न बताता है एक दूसरे से। या वै प्रज्ञा स प्राण, यो वै प्राण सा प्रज्ञा, ऐसा एक वाक्य आता है। यह वाक्य बताता है कि जो प्रज्ञा है यानी बुद्धि है वह प्राण है। का मतलब प्रज्ञा और प्राण एक दूसरे से अभिन्न है, एक दूसरे से तादात्म्यापन्न है। बुद्धि है ज्ञान शक्ति, प्राण है क्रिया शक्ति, और यौवेक प्राण सा प्रज्ञा, जो क्रिया शक्ति है वह ज्ञान शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है वह क्रिया शक्ति है। तो इसलिए यहां पर प्राण शब्द से जो ज्ञान शक्ति कहलाती है बुद्धि, उससे अभिन्न क्रिया शक्ति रूप प्राण को लेना, सूत्रात्मा को, समष्टि प्राण को, लेकिन साथ में ज्ञान शक्ति भी, ज्ञान शक्ति से युक्त क्रिया शक्ति प्राण, वह प्राण शब्द का अर्थ है। यानी समष्टि बुद्धि तादात्म्यापन्न समष्टि प्राण, उसका सर्जन किया परमेश्वर ने। असृजत, और फिर कहते हैं प्राणात श्रद्धां, तो प्राण से यानी प्राण की उत्पत्ति के अनंतर, ये पंचमी अनंतर अर्थ में है, क्रम दिखाना है ना, तो प्राण सृष्टि के अनंतर श्रद्धा की सृष्टि की परमेश्वर ने। श्रद्धां असृजत, श्रद्धा को बनाया। तो श्रद्धा शब्द का तो अर्थ होता है एक प्रकार से अंतःकरण का धर्म है, बुद्धि का धर्म है। प्राण के अनंतर श्रद्धा को बनाया, इसमें श्रद्धा में दो शब्द हैं, एक श्रत अव्यय है, उसका अर्थ होता है सत्यम, श्रत यानी सत्यम, और धा का अर्थ होता है धारण करने वाली। श्रत दधाति या सा श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो श्रद्धा शब्द का अर्थ निकलता है जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति है, सत्य को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति, उसका नाम है श्रद्धा। इसीलिए श्रद्धा की परिभाषा करते हुए शास्त्रकारों ने कहा कि आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा, श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि, आस्तिक्य बुद्धि का नाम है श्रद्धा। आस्तिक्य का मतलब जो वेद बताता है वह सत्य ही है, वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ अन्यथा नहीं हो सकता। वेद ने जो साध्य साधन भाव बताया है वह बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी असत्यता नहीं है, सत्य ही है। ये जो विश्वास, ये है आस्तिक्य बुद्धि, बुद्धि यानी बुद्धि की वृत्ति, इस बुद्धि वृत्ति का नाम है श्रद्धा। और वेद ने बताए हुए साध्य साधन भाव में जब तक प्रामाण्य बुद्धि नहीं होगी, सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी, तब तक फिर वेद के द्वारा बताया गया जो साधन है उसमें प्रवृत्ति भी नहीं होगी। आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग तो देखा नहीं है, और वेद कहता है कि स्वर्ग कामो यजेत, यदि आपको स्वर्ग प्राप्त करना है तो स्वर्ग की प्राप्ति का साधन यज्ञ करो। तो ये यज्ञानुष्ठान तथा स्वर्ग प्राप्ति, इसका साध्य साधन भाव बताने वाला ये वाक्य हुआ। स्वर्ग प्राप्त करना है तो याग रूप साधन है उसका। तो याग करने में प्रवृत्ति किसकी होगी, इस वाक्यार्थ पर जिसकी श्रद्धा है। ये वाक्य हमें गलत साधन नहीं बता सकता, श्रुति हमें गलत मार्गदर्शन करके क्या अपना स्वार्थ सिद्ध करेगी। ये हमारी परम हितैषी हैं, ये हमारा हित चाहती हैं, तो हमारे हित का ही साधन वो बता रही है, और उसने बताए हुए साधन को हम अपनाएंगे तो हमारा हित ही होगा, कल्याण ही होगा। इस प्रकार का जो बुद्धि में निश्चय वो है श्रद्धा, और ये प्राण के निष्पत्ति के बाद श्रद्धा को निष्पन्न किया, अस्तिक के बुद्धि को निष्पन्न किया परमेश्वर ने। और इसके बाद कहा जाता है कि खम यानी आकाश और वायु यानी वायु को उत्पन्न खम स खम असृजत, ऐसा अनुवाद करना। उस परमेश्वर ने खम यानी आकाश को उत्पन्न किया, वायु ये प्रथमांत है, उसे द्वितीय में परिणत करना, स वायुम असृजत और स ज्योति असृजत, स अपह असृजत, अपह भी प्रथम है उसको भी द्वितीय बनाना पड़ेगा, पृथ्वी को भी यानी पांचों भूतों को बनाया। ये पांच भूत यहां पर एक वेदांत का प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करने वाले वेदांत जिज्ञासु के मन में प्रश्न उपस्थित होना चाहिए, शंका आनी चाहिए। क्या शंका आनी चाहिए? हाँ, तो प्राण तो कहा कि परमेश्वर ने बनाया पहले प्राण को, फिर श्रद्धा को, और फिर आकाशादि भूतों को। लेकिन वेदांत प्रक्रिया के अनुसार ये प्राण भी भौतिक है कि नहीं? बुद्धि भी भौतिक है, प्राण भी भौतिक है। भौतिक कहते हैं भूतों के कार्य को, भूतों का कार्य भौतिक कहलाता है। तो प्राण भौतिक होने से वो भूतों भूत रूपी अपने कारण के पहले ही परमेश्वर से कैसे बनेगा? यहां परमेश्वर की सृष्टि पहले बताई जा रही है और प्राण की सृष्टि के बाद, परमेश्वर से प्राण की सृष्टि के बाद फिर बताया जा रहा है आकाश आदि को परमेश्वर ने बनाया करके। तो बिना भूतों के ही प्राण निष्पन्न होगा क्या? इसलिए यह समझना कि यहां जो प्राण के उत्पत्ति के बाद, श्रद्धा के उत्पत्ति के बाद जिन भूतों की उत्पत्ति बताई जा रही है, वे सूक्ष्म कार्य, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति के अनंतर उत्पन्न होने वाले जो स्थूल भूत हैं, वे हैं, तन्मात्रा रूप नहीं। तन्मात्रा तो कहा जाता है सूक्ष्म भूतों को, अपंचकृत पंचमहाभूतों को। यहां अपंचकृत पंचमहाभूत आख, वायु, ज्योति, आप, पृथ्वी, इन शब्दों से ग्रहण नहीं करना, अपितु ख इत्यादि पांचों भूतों के वाचक, इन पांचों शब्दों से पंचीकृत भूतों को समझना, स्थूल भूतों को समझना। स्थूल भूतों की निष्पत्ति सूक्ष्म कार्य की उत्पत्ति के अनंतर होती है, इसलिए प्राण उत्पन्न करने से पहले ही सूक्ष्म प्राण के कारणभूत जो सूक्ष्म भूत हैं उनको परमेश्वर ने बनाया, वो यह नहीं बताया गया। वो सृष्टि सूक्ष्म भूतों की बताई गई आपके छांदोग्य में और तैतरीय उपनिषद में। तस्माद वायु तस्माद आत्मन आकाश संभूत आकाशाद वायु वायो अग्नि अग्ने राप इत्यादि तैतृय श्रुति परमेश्वर से अपंजीकृत पंचभूतों की पहले उत्पत्ति बताती है। उसके बाद फिर उन अलग अलग पंचभूतों के अलग अलग सत्वगुण से ज्ञान इंद्रिया, अलग अलग रजोगुण से कर्म इंद्रिया, सम्मिलित सत्वगुण से अंतकरण और सम्मिलित रजोगुण से प्राण, वे प्राण के उपादान कारण भूत जो पांच भूत हैं वे सूक्ष्म हैं, उनकी उत्पत्ति तो पहले ही हो गई ऐसा समझना। और यहां प्राण की उत्पत्ति बताई जा रही है, तो प्राण की उत्पत्ति में उपयोगी सूक्ष्म भूत पहले परमेश्वर से निष्पन्न हुए और उनसे भगवान ने परमेश्वर ने प्राण को उत्पन्न किया, बुद्धि अभिन्न प्राण को उत्पन्न किया और फिर उससे श्रद्धा और फिर वायु आदि ये खादि स्थूल भूत उत्पन्न हुए और स्थूल भूतों से भी लेना स्थूल भूत और स्थूल भूतों से होने वाला जो स्थूल शरीरों का कारण है एक जिसे भूत सूक्ष्म कहा जाता है, स्थूल भूतों का ही जो सूक्ष्म अंश है उसे कहा जाता है भूत सूक्ष्म। अपंचकृत पंच महाभूतों को तो कहा जाता है सूक्ष्म भूत, वे हैं सूक्ष्म शरीर के कारण और स्थूल शरीर के कारण हैं स्थूल भूत, लेकिन स्थूल भूत का मतलब कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी उठा ली, कहीं का भी पानी उठा लिया, कहीं से थोड़ी सी वायु मिला ली, कहीं से अग्नि ले लिया और आकाश तो ही है और उनको मिला लिया तो स्थूल शरीर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इन्हीं स्थूल भूतों का एक सूक्ष्म अंश होता है उसे भूत सूक्ष्म कहते हैं। भूत सूक्ष्म वो है स्थूल शरीर का बीज और उनको उस स्थूल शरीर के बीज भूत भूत सूक्ष्मों को यहां पर खम इत्यादि से समझना। हाँ हाँ, महाकाश का ही एक सूक्ष्म अंश है जो इस स्थूल शरीर का कारण बन जाता है, पांचों महाभूतों का स्थूल पंच महाभूत उनका एक सूक्ष्म अंश निकलेगा और वो इस स्थूल शरीर का कारण बन जाता है। वो एक तत्व है, वो प्रत्येक जीव का अलग अलग है। जैसे सूक्ष्म शरीर वेष्टि सूक्ष्म शरीर सबका अलग अलग है, आपकी बुद्धि अलग अन्य की अलग सबकी अलग अलग है ना, ऐसे भूत सूक्ष्म भी अलग अलग है। वो एक तत्व है, वह सृष्टि के प्रारंभ में प्रत्येक जीव के साथ जीव के उपाधि के रूप में ईश्वर निष्पन्न करते हैं और वो हमेशा रहता है। इस स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर निकल करके जाता है तो उसी भूत सूक्ष्मारूढ़ होकर के जाता है, केवल सूक्ष्म शरीर मात्र नहीं जाता, इस स्थूल शरीर से स्थूल शरीर का कारण भूत जो भूत सूक्ष्म है उसी में आरूढ़ होकर के उसी के आश्रित होकर के सूक्ष्म शरीर यहां से निकल करके दूसरे लोक में पहुंचता है। फिर यदि स्वर्ग में देवता बनना है तो उसी भूत सूक्ष्म से वो देवता का शरीर निष्पन्न होता है, जो यहां खम आदि शब्दों से कहा जा रहा है भूत सूक्ष्म, उससे देवादि शरीर बन जाएंगे। कभी फिर देवता से मृत्यु लोक में आ जाएगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों विषयंति, और मनुष्य बनना है तो सूक्ष्म शरीर भी आएगा और ये भूत सूक्ष्म भी आएगा और मनुष्य का रूप धारण करेगा। फिर कभी पशु शरीर में जाएगा तो पशु का शरीर, 84 लाख प्रकार के जो स्थूल शरीर हैं उनका कारण बन जाता है यही जो खम इत्यादि शब्दों से कहा जाने वाला भूत सूक्ष्म, वो स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश है, इसलिए है पंचीकृत भूतों से ही बना हुआ, इसलिए तो स्थूल शरीर उससे बनता है। और वो प्रत्येक जीव का एक बार सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर देते हैं साथ में, जैसे सूक्ष्म शरीर इंद्रिया आदि सब होता है, वो बार बार नहीं बदलते। इसलिए 15वें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा ये जो है मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिकर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रा मतीश्वर गृहीतोय तानि सह्याति वायुर गंधा निवासयात। तो जैसे वायु बगीचे से निकलती है तो बगीचे में खिले हुए पुष्पों के पराग कणों को अपने साथ ले जाती है तो सुगंधी वायु प्रतीत होती है बगीचे से आने वाली। कहीं गंदे नाले से आती है वायु तो वहां के भी कणों को, दुर्गंधी को, दुर्गंधी के आश्रयभूत जो कण हैं उनको साथ में ले आती है, दुर्गंधी वायु प्रतीत होती है। तो जैसे वायु जहां से निकलती है वहां के सुगंधी या दुर्गंधी के आश्रयभूत कणों को अपने साथ ले जाती है, ऐसे यह जो ईश्वर शब्दित शरीर का स्वामी जीव है यह एक शरीर से निकलता है उस समय जिस शरीर से निकल रहा है प्रारब्ध समाप्त होने पर, तो अपने अपने गोलकों में स्थित जो मनादि इंद्रिया है उनको और मनादि इंद्रियों के साथ को अपने साथ ले लेता है, पूरे सूक्ष्म शरीर के 17 तत्वों को और ये भूत सूक्ष्मों को भी अपने साथ ले लेता है और तब यहां से यात्रा प्रारंभ करता है। कारण शरीर अज्ञान है, वो तो साथ में रहेगा ही, कारण शरीर है अज्ञान स्वरूप का अविद्या, वो तो रहता ही है साथ में। ये सूक्ष्म शरीर अंतपाती 17 तत्व और ये भूत सूक्ष्म भी, इनको भी साथ में ले जाता है और इनको साथ में ले जा करके फिर वहां दूसरे लोक में वहां के शरीर के रूप में ये भूत सूक्ष्म परिणत होता है। और जैसे जैसे शरीर का निर्माण होता है तो सूक्ष्म शरीर अंतपाती चक्षुरादि इंद्रिया अपने अपने गोलकों में स्थित हो जाती है। वो संस्कार रहते हैं, संस्कार और अदृष्ट पुण्य पाप धर्माधर्म वो रहता है बुद्धि में, अंतकरण आश्रित है। वो अंतकरण में है, वो भी चले जाते हैं। तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेते पूर्व प्रज्ञाच, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में आया। मरने वाले जीव के साथ उसके सारे कर्म और चिंतन, विद्या का अर्थ है चिंतन जो किया, अच्छा बुरा, अच्छा चिंतन है शास्त्र ने बताया हुआ चिंतन यानी उपासना है, और बुरा कर्म चिंतन है विषय चिंतन, वो भी उसके साथ चला जाता है, और पूर्व प्रज्ञा है संस्कार, वो सब साथ में चले जाते हैं, अकेला नहीं जाता। कैसा जब जाता है तो कराहता हुआ जाता है, कैसे कराता हुआ जाता है इसके लिए बृहदारण्यक में उदाहरण बताया, दृष्टांत बताया। जैसे कोई पुरानी गाड़ी हो और बैलगाड़ी पुरानी होती थी ना पहले तो, हाँ, और किसी का जिस स्थान में रह रहा था उस स्थान से तबादला हुआ, बदली हो गई, चला जा रहा है जहां पर बदली हुई वहां पर, तो जो सामान आवश्यक होता है वो सब लेकर के जाएगा ना, तो गाड़ी में जितना सामान आ सकता है उससे थोड़ा ज्यादा सामान है तो उसके लिए दूसरी गाड़ी थोड़ी करेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा है तो ओवरलोड कर देगा और गाड़ी चलेगी तो बोलते हुए चलती है, कुरकुराते हुए चलती है। ऐसे ही इस शरीर से निकलता है शरीरांतर की यात्रा करने के लिए, तो पहले जन्मों के किए हुए सारे कर्म, संचित कर्म और इस जन्म के कर्म, सारा चिंतन, सारे संस्कार, ये सब अपने साथ लेकर के जाता है। ये सारे सूक्ष्म शरीर के तत्व और भूत सूक्ष्म, इतना सारा वजन लेकर के जब निकलता है तो करहता हुआ निकलता है, ज्यादा भार हो जाता है तो व्यक्ति करहता है ना, ऐसे निकलता है। तो यहां खम इत्यादि का अर्थ है भूत सूक्ष्म, जो स्थूल शरीर के कारण है और उनको ईश्वर ने बनाया, और इंद्रिया। अब इंद्रिया भी तो सूक्ष्म भूतों का कार्य है, जैसे प्राण स्थूल भूतों के पहले उत्पन्न होता है, ऐसे इंद्रिया और मन भी तो स्थूल भूतों से पहले ही उत्पन्न होगा, तो उनकी सृष्टि पहले बतानी चाहिए थी। यहां खम इत्यादि से स्थूल भूतों को बताने के बाद इंद्रिय और मन की उत्पत्ति क्यों बता रहे हैं, तो कहते हैं इसलिए कि यहां ये दिखाना है कि जो सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व हैं, इंद्रिय शब्दित तो पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, ये जब तक अपने गोलक में स्थित नहीं होते तब तक कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, कार्यरत नहीं हो सकते। जब जीव एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर की यात्रा करता है, दूसरे शरीर में उसके गोलकों का निर्माण नहीं होता, तब तक इंद्रिया कुछ भी देख नहीं सकती, आंख बिना गोलक में स्थित हुए, इस चर्म चक्षु में स्थित हुए, कान सुन नहीं सकती। इंद्रिया तो एक शक्ति रूप है, वो शक्तियां और उनके यंत्र हैं ये नेत्रादि, जो चर्म चक्षु आदि, हृदय आदि, ये सब गोलक हैं, ये है स्थूल शरीर के अंश। तो स्थूल शरीर के अंश रूपी अपने अपने गोलक यानी ऑफिस में जब वो बैठेंगे अपनी कुर्सी में, तभी वो फाइल देखेंगे, अपना अपना कार्य कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाते। ऐसे रोड पर थोड़ी ही कोई पूछ ले किसी ही व्यक्ति को कि हमारे आपके पास फाइल है तो उसका क्या हो रहा है, तो कहेगा ऑफिस में चलना पड़ेगा, कंप्यूटर खोलना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे आपका क्या यह है, उससे पहले तो ऐसे बीच में तो रस्ते में है। तो ये जब तक स्थूल शरीर में स्थित नहीं होती अपने अपने गोलकों में इंद्रिया, तब तक व्यापार करने में असमर्थ रहती है। वो चाहे कर्मेंद्रिया हो, चाहे ज्ञान इंद्रिया हो, चाहे अंतकरण हो मन। तो ये दिखाने के लिए कि व्यापार में समर्थ इंद्रिया वो स्थूल शरीर बनने के बाद होती है, इसलिए भूतों के बाद इंद्रिय तथा मन का वो क्रम बताया गया। और अब ये इस प्रकार यहां तक प्राण से लेकर के मन तक कार्य और करण बताया गया, जीव की उपाधिभूत कार्य बताया गया, कार्य यानी स्थूल शरीर, स्थूल शरीर को बताया गया खम से लेकर के पृथ्वी पर्यंत पांच भूतों के वाचक पांच शब्दों से स्थूल शरीर को बताया गया, पांच भूतों को, और बाकी सब प्राण, श्रद्धा, इंद्रिय, मन, ये जो शब्द हैं कार्य को बताने वाले, इनसे करण को बताया गया, करण कहते हैं सूक्ष्म शरीर को, ये सब सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व है। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जीव की उपाधिभूत यहां पर बताया गया। स्थूल शरीर पंचभूतों से बना है, स्थूल पंचभूतों से, इसलिए इसे अन्नमय कोष कहा जाता है। ये अन्न से संवर्धित होता है, इसलिए इसको इसकी स्थिति का हेतुभूत शरीर में भी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में कब तक रह सकेगा, जब तक अन्न ले लेते हैं। अनशन करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब तक पहले से लिया हुआ अन्न है तब तक तो शरीर में प्राण रहेंगे, और वह अन्न समाप्त हो गया, सूक्ष्म अंश भी शरीर में से अन्न का, तो प्राण निकल जाएंगे फिर। इसलिए कहा अन्ने प्राण प्रतिष्ठित, अन्न में प्राण प्रतिष्ठित है। तो ये कार्यक्रम संघात के स्थिति का हेतुभूत जो अन्न है, उस अन्न को भी परमेश्वर ने उत्पन्न किया, कार्यक्रम संघात को उत्पन्न करके। इसे यहां पर कहा जा रहा है मन के बाद में अन्नम, स अन्नम असृजत, ऐसा अनुय करिए कि उस परमेश्वर ने अन्न को उत्पन्न किया। और जब अन्न खाते हैं तो अन्न से वीर्य यानी सामर्थ्य प्राप्त होता है, बल मिलता है। सूक्ष्म जो अंश है, खाए हुए अन्न का त्रिवृतकरण हो जाता है। वो अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया। और पाचन क्रिया के माध्यम से जो खाए हुए अन्न का स्थूल अंश बना, वह तो मल बन करके और पानी का मूत्र बन करके निकल जाता है। मध्यम अंश शरीर को पुष्ट करता है और सूक्ष्म अंश अन्न का मन को पुष्ट करता है। इसलिए उद्दालक जी ने कहा अन्नमयम ही सौम्य मनः, हे सौम्य यानी श्वेत केतु, प्रियदर्शन श्वेत केतु, ये मन जो है अन्नमय है, यानी अन्न से पुष्ट होता है और शरीर भी अन्न से पुष्ट होता है। तो मन है करण, वो भी खाए हुए अन्न के सूक्ष्म अंश से पुष्ट हुआ और शरीर भी खाए हुए अन्न के मध्यम अंश से पुष्ट हो जाता है, उससे अन्न रसादि बन जाते हैं सप्तधातु, और फिर उससे मिल जाती है शक्ति। मन को भी शक्ति मिल रही है, पुष्ट हो रहा है का मतलब, और शरीर को भी शक्ति मिल रही है, सामर्थ्य मिल रहा है। इसलिए कहा कि अन्नात वीर्यम, वीर्य यानी वो सामर्थ्य प्राप्त हुआ, और वीर्य से फिर बल आया, तो बलवान को तप करने के लिए कहा जाता है। वो तप भी एक कला के रूप में ईश्वर के द्वारा सृष्ट है। ईश्वर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।